है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर होशे के पारिवारिक जीवन के द्वारा इसराइलियों को संदेश दे रहा है, यहां तक कि यह संदेश हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए भी लागू होता है। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। विशेष करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर रहकर आपके वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आज के अध्ययन पर भी आप आशीष प्रदान करें, प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आपका वचन प्रत्येक के कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए। हमारी प्रार्थना उन श्रोता भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, तनाव में है, या अपने जीवन साथी की तलाश में है, या अपने रोजगार की तलाश में है। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, अपनी शांति दें, ताकि प्रत्येक आपके वचन पर भरोसा रखने पाए। आज अपने हर एक श्रोता मित्रों को आपके निकट लाते हैं, विनती करते हैं कि सब पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सब होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय उसके 17 पद से हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। होशे 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, आप मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। बाल का नाम भी भुला दिया जाएगा क्योंकि वे मूर्ति पूजा कर रहे थे, परंतु वे मूर्ति पूजा से फिर जाएंगे और परमेश्वर की ओर आ जाएंगे। होशे 2 अध्याय के 18 पद में आगे हम पढ़ते हैं, उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मेरे मित्रों, इसराइल में भी अनेक वन पशुओं के विलोप हो जाने का संकट है और कुछ प्रजातियां तो विलोप हो भी गई हैं। परमेश्वर ने जानवरों को बनाकर इस संसार में रखा है, उन्हें इस संसार में जीने का अधिकार है। भविष्य में परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधेगा। प्रभु राज में शेर और मेमना एक साथ बैठेंगे। क्या आपने बाइबल में देखा है कि परमेश्वर कदम कदम पर पशुओं में रुचि रखता है? वह तो भूमि में भी रुचि रखता है और उसे आशीष देगा। मनुष्य ही है जो उसे दूषित करता है, वह भीतर और बाहर से पापी है, उसके तो स्पर्श से ही सब कुछ दूषित हो जाता है। मैं एक बार रेगिस्तान के मार्ग से आ रहा था और संध्या काल के समय जब सूरज की किरणें मार्ग के दोनों ओर गिर रही थी, तब वहां एक दृश्य बेजोड़ था। आप जानते हैं क्यों? सड़क के दोनों ओर बियर की बोतलें टूटी पड़ी थी, उनमें कुछ ठंडे पेय की बोतलें भी थी जिनके कांच में सूर्य की किरणें चमक रही थी। मनुष्य सब कुछ दूषित कर देता है। परमेश्वर कहता है कि वह इस पृथ्वी की सुधि लेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मनुष्य तो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। होशे 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहां हम एक अति अद्भुत बात देखते हैं। आपको स्मरण होगा कि युवावस्था में आपकी पत्नी कैसी सुंदर थी। एक बार मैं अपने घर के आंगन में अपनी पत्नी के साथ बैठा था और विचार कर रहा था, तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है, परंतु मुझे उसकी जवानी याद है। उसके बाल, उसकी चमकीली आंखें और युवावस्था को स्मरण करके हम भावनात्मक हो उठते हैं। मैं कैसे कैसे उसके साथ घूमता था, यह एक मनोरम अनुभव था। समुद्र के तीर में बैठना, बातें करना, सब कुछ एक अनुभव था। परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल के साथ ऐसा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा। मेरे प्रियो, वह यह कैसे करेगा? वह उसे धार्मिकता, न्याय और प्रेमपूर्ण दया के साथ अपनाएगा। मूसा की व्यवस्था में भी दया का प्रबंध था, उसमें प्रेम वैसे ही व्याप्त था जैसे प्रेम में विधि विधान व्याप्त होता है। आप प्रेम और व्यवस्था को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यह भी एक कारण है कि मैं आज के इसराइल को भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं कह सकता। परमेश्वर कहता है कि जब वह इसराइल को स्वदेश लौटा लाएगा तब वह धार्मिकता, न्याय और करुणा और दया के साथ होगा। आज इसराइल एक सामान्य देश है और लोगों का सोचना है कि अनावश्यक हत्यारे हैं, परंतु यह उनकी सुरक्षा है कि जीवित रहें। उनकी वहां उपस्थिति भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। जी हां, वे स्वदेश तो लौट आए हैं, परंतु वे प्रभु के पास नहीं लौटे हैं। प्रभु के पास आ जाने पर वहां आशीषों की वर्षा होगी। लिखा है, तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। वे पहले कभी विश्वास योग्य नहीं थे, वे आज भी विधर्मी कलीसिया के समान थे। लिखा है, और तू यहोवा को जान लेगी। आज वे यहोवा को नहीं जानते हैं और यही कारण है कि वे परमेश्वर से दूर हैं। होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। ध्यान दीजिए, लिखा है उस समय, अर्थात महाक्लेश के समय और प्रभु के आगमन के समय, जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। तब हम आगे देखते हैं, मैं आकाश को सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसको उत्तर देगा। स्वर्ग और पृथ्वी सामंजस्य में होंगे। होशे 2 अध्याय के 22 पद में लिखा है, और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देंगे और वे इज़राइल को उत्तर देंगे। इज़राइल अर्थात परमेश्वर तीतर बीतर करेगा, परंतु भविष्य में परमेश्वर उन्हें एकत्र करेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं, होशे 2 अध्याय उसके 23 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लो अमी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। मेरे मित्रों, ये अंतिम 2 पद गोमेर की संतान के नामों का खेल है। परमेश्वर उन्हें एकत्र करेगा, वे फिर कभी लोरुहामा नहीं होंगे जैसे वेश्या की संतान थी, जिस प्रकार दया नहीं की गई थी। परमेश्वर उन पर दया करेगा। आज इसराइल लुआमी है, मेरे लोग नहीं, परंतु भविष्य में परमेश्वर कहेगा, तुम मेरे लोग हो, और वे कहेंगे, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे मित्रों, आज उनके मुख से यह सुना नहीं जाता है, वे परमेश्वर से दूर हैं। यह प्रभु राज की भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। इस अध्याय का विषय है, होशे को आशा दी गई कि गोमेर को ले आए। मेरे मित्रों, होशे की पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि वह जाकर गोमेर को फिर से घर ले आए। तो आइए हम पढ़ें, होशे 3 अध्याय उसके 1 पद लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इसराइली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रीति रखें, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, अर्थात वह तेरी पत्नी है, इसलिए उससे प्रेम कर। अपने प्रिय की प्यारी हो, उसके विश्वासघाती होने पर भी होशे उससे प्रेम करता था। व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इसराइली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रेम रखते हैं। दाख की टिकियें कनानियों के पर्वों में काम आती थी, वे मूर्ति पूजा में उन्हें काम में लेते थे। इसराइलियों ने भी यही काम अपना लिया था। परमेश्वर इसका संदर्भ देते हुए होशे से कहता है कि वह अब समझ रहा होगा कि परमेश्वर के मन को कैसा दुख है। अतः वह कहता है कि गोमेर विश्वासघाती तो रही, परंतु होशे को उससे प्रेम निभाना है और उसे घर ले आना है। मैं भी इसराइल के साथ ऐसा ही करूंगा, दंड देने के बाद उसे घर लौटा लाऊंगा। होशे 3:2 में आगे लिखा है, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, गोमेर शायद वेश्यालय में अपने आप को बेच चुकी थी और होशे ने मूल्य चुकाकर उसे फिर से ले लिया। मैंने मोल लिया, हमें भी मोल देकर छुड़ाया गया है। जी हां, यह एक अच्छा दृश्य नहीं है, इसी कारण इसका प्रचार नहीं किया जाता है। रूढ़िवादियों में हम समर्पण और प्रभु को जीवन देने के बारे में सुनते हैं, परंतु मेरे मित्रों, आपका पहला कदम है परमेश्वर के पास पापी रूप में आप आए। वह आपको मोल लेकर छुड़ाएगा, जैसा होशे ने किया। इसके बिना हम परमेश्वर को समर्पण करने के बारे में कुछ नहीं जानेंगे। आगे हम देखते हैं, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। गोमेर इस योग्य नहीं थी, हम भी छुटकारे की कीमत के योग्य नहीं हैं। पत्रस कहता है, 1 पत्रस 1:18-19 में, तुम्हारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु को हमारे लिए लहू बहाकर क्यों मरना पड़ा? क्योंकि हम पाप के हाथों बिक चुके थे। मेरा एक मित्र बहुत बड़ा प्रचारक है, परंतु वह प्रचार नहीं करता कि हमें परमेश्वर के पास पापी रूप में आना है। वह कहता है, आपको प्रभु यीशु से प्रेम करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना है, आपको परमेश्वर की सेवा करना है। परंतु मित्रों, यह आपका पहला कदम नहीं है। आप कब्रिस्तान में जाकर पुकारें, हमें प्रभु यीशु को अपना जीवन देना है। वे क्या करेंगे? वे तो सब मरे हुए हैं। इसी प्रकार हम भी अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हैं। हम परमेश्वर के उद्धार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए जीवन तो है ही नहीं। नया जन्म पाने के बिना, नया स्वभाव पाने के बिना हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं और न दे सकते हैं। मेरे प्रियो, हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर के पास आएं, अपने पापों को स्वीकार करें और निश्चय ही वह मुझे और आपको क्षमा करेगा। होशे 3:3 में हम पढ़ते हैं, मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात कर रही है। उसने एक जासूस की सहायता से इसकी पुष्टि की थी। उसके दुख की कल्पना कीजिए। मैं इससे अधिक दुखदायी बात दूसरी नहीं देख सकता। परमेश्वर इसराइल से कह रहा है, तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो परंतु मानते अन्य देवताओं को हो, अर्थात अन्य देवताओं के पीछे तुम चलते हो, तुम मुझसे फिर गए हो, तुम मेरी सेवा नहीं करते। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 22 और 23 पद में प्रभु यीशु कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब मैं एक अति कठोर बात आपसे कहने जा रहा हूं। यदि किसी कलीसिया का पादरी परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व और पापियों के लिए प्रभु यीशु के मरने से इनकार करता है, तो वह कलीसिया नहीं हो सकती। वह एक आत्मिक विश्यालय है। यह मैं नहीं, परमेश्वर यहां कह रहा है। यही कारण था कि होशे ने नाम नहीं कमाया। वह इसराइल से कह रहा है, तुम एक वेश्यालय हो, तुमने जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का त्याग करके मूर्ति की पूजा की है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे पद 4 और 5 में भविष्यवाणी के महत्वपूर्ण पदों में से ये पद 4 और 5 हैं, जो प्रभु के आगमन की तिथि निर्धारित करने वालों के लिए हैं। यह अध्याय परमेश्वर के वचन का एक महान भविष्यवाणी का अंश है। डॉक्टर चार्ल्स फियनवर्क कहते हैं, परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन में यह अध्याय भविष्यवाणी की महान घोषणाओं में अपना अधिकृत स्थान रखता है। इसके साथ ही आपको रोमियो की पत्री 9 अध्याय से 11 अध्याय पढ़ना चाहिए। मैं इन अध्यायों को इसराइल से संबंधित मानता हूं। अध्याय 9 में इसराइल के साथ परमेश्वर के पूर्व काल का व्यवहार है। अध्याय 10 में इसराइल के साथ उसका वर्तमान व्यवहार है और अध्याय 11 में उसका भावी व्यवहार है। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या आप भी उस गोमेर स्त्री के समान जो वेश्या की धंधे में चली गई है, आप अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने परमेश्वर को छोड़ करके उन संसार के वस्तुओं में खोए हुए हैं? आज परमेश्वर चाहता है कि आप फिर आएं, क्योंकि वह आपको बदलना चाहता है, आपको स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि उसने आपके लिए कीमत चुकाई है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को इतना ज्यादा न गिराएं, परंतु परमेश्वर की निकटता में लाएं, क्योंकि हमें इस संसार में जीवन जीना है और उसके लिए जीना है, क्योंकि उसी ने यह जीवन मुझे और आपको दिया है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपने परमेश्वर के उन वचनों को देखा है, सुना है, जाना है। आप उस पर अवश्य चलने का यत्न करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 22600, उत्तर प्रदेश, पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Thank you.